नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत का दौर तेज हुआ। जदयू के नेताओं ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार ने जातिवादी राजनीति को नकार दिया है। भाजपा से पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निलंबित पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने इस्तीफा दिया। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में लगातार हो रही है गिरावट, अगले दो दिनों के दौरान कई स्थानों पर कोहरा छाए रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत का दौर तेज हो गया है। कल पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन सहित एनडीए के घटक दलों के कई नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान सरकार गठन को लेकर औपचारिक बातचीत भी की गई। इधर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी कल शाम नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया जाता है कि इस दौरान सरकार के गठन की प्रक्रिया को लेकर शुरुआती बातचीत हुई है। मौजूदा सरकार के मंत्रिमंडल की कल अंतिम बैठक होने की संभावना है। बैठक में मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश की जाएगी।
जनता दल यूनाइटेड ने अपने सभी नवनिर्वाचित 85 विधायकों को पटना बुलाया है। कल जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एनडीए के पांचों घटक दल अलग अलग बैठक कर अपने विधायक दल के नेता चुनेंगे। इसके बाद सभी की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें एनडीए का विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक दल की कल हुई बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना गया। अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल की बैठक आज होने की संभावना है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि राज्य के लोगों ने विकास की नई ऊंचाइयों के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव ने देश को महिला और युवाओं का एक ऐसा समीकरण दिया है जो आने वाले कई दशकों की राजनीति का आधार बनेगा।
बिहार अब विकास में नई ऊंचाई को प्राप्त करने का मिजाज दिखा रहा है। इस चुनाव में उस मिजाज के दर्शन हुए। बिहार की माताएं बहनें और बिहार के नौजवान, महिला युवा, ये एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है। दोस्तों,
प्रधानमंत्री ने कहा कि जातिवाद के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वालों के लिए यह चुनाव परिणाम एक सबक है।
और मैं साफ मानता हूं, हिन्दुस्तान की राजनीति में पिछले दो साल से बिहार में ये जमानती नेता जो जमानत पर घूम रहे हैं, वे बिहार में जा जा करके जातिवाद जातिवाद का भाषण देते रहते थे। और उनसे जितनी ताकत थी उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाने की थी। और पुराने जमाने से उनको लगता था शायद इससे उनका खेल हो जाएगा। बिहार के इस चुनाव ने जातिवाद के उस जहर को पूरी तरह नकार दिया है। ये देश के लिए बहुत ही उज्ज्वल संकेत है।
बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद पार्टी में आंतरिक मतभेद गहरे हो गए हैं। पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने नाराजगी व्यक्त करते हुए घोषणा की कि वो राष्ट्रीय जनता दल छोड़ रही हैं और परिवार से सभी संबंध तोड़ रही हैं। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी की करारी हार हुई है और कार्यकर्ता प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा।
श्रीमती रोहिणी ने कहा कि उन्होंने जब ये प्रश्न उठाया तो उन्हें तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और रमीज खान ने धमकी दी। रोहिणी आचार्य ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण और किफायती दवाएं अमृत पहल के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में अमृत पहल की 10वीं वर्षगांठ पर कहा कि इस कार्यक्रम ने पिछले 10 वर्षों में रोगियों की लगभग 8,500 करोड़ रुपए की बचत की है। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 255 अमृत फार्मेसी हैं।
अमृत के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हमें 10 वर्ष हो गए हैं और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मैं अमृत के माध्यम से व्यापक जन सेवा कर पा रहा हूं। इसके लिए मैं HLL को भी बधाई देना चाहता हूं। ये सार्वजनिक क्षेत्र में HLL द्वारा किए गए अच्छे प्रयासों में से एक है। मुझे बताया गया है कि अब हमारे पास 255 फार्मेसीज हैं।
नाउ वी हैव गॉट 255 फार्मेसीज।
श्री नड्डा ने पूरे देश में 10 नई अमृत फार्मेसी का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय और प्रत्येक जिला अस्पताल में अमृत फार्मेसी स्थापित की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए राज्य के सभी जिलों में आज धन्यवाद मार्च निकालेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में जानकारी दी।
अभी पहले हम लोग जो है धन्यवाद मतदाता प्रत्येक विधानसभा और जिला में जो है कार्यक्रम करेंगे, सभी मतदाताओं को धन्यवाद देंगे। उसके बाद जो है पांचों दल अपना अलग अलग जो है बैठ करके अपना नेता का चयन करेंगे।
आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को स्वतंत्र और दायित्वपूर्ण प्रेस की भूमिका को मान्यता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। परिषद ने 1966 में इसी दिन अपना कामकाज शुरू किया था। स्थापना के बाद से परिषद के एक स्वतंत्र नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करती रही है। यह पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखने और प्रेस को बाहरी प्रभावों तथा खतरों से बचाने के लिए कार्य कर रही है। इस वर्ष का विषय बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा पर केंद्रित है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। राज्य के दक्षिणी हिस्से के 19 जिलों में धान की खरीद शुरू हो गई है। औरंगाबाद को छोड़कर अन्य जिलों में पैक्सों और व्यापार मंडलों ने धान खरीदना शुरू कर दिया है। किसानों को साधारण धान के लिए प्रति क्विंटल 2,369 रुपये और ग्रेड एक धान के लिए 2,389 रुपये का भुगतान किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपने निलंबन के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे गए पत्र में श्री सिंह ने कहा है कि उनके निलंबन का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा विधान पार्षद अशोक अग्रवाल और पार्टी नेत्री उषा अग्रवाल को भी पार्टी ने नोटिस जारी किया है कि क्यों न उन्हें अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निष्कासित किया जाए। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य के कुछ स्थानों पर अगले दो दिनों के दौरान हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।
अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के एक या दो स्थानों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सासाराम में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पटना के अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। राज्य में धूल कण के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पटना जिले के समनपुरा का AQI 309 दर्ज किया गया है, जबकि राजगीर की हवा सबसे स्वच्छ मापी गई है। परिषद के अनुसार प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण निर्माण कार्य और सड़कों की सफाई नहीं होना है। इधर मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि ठंड में तापमान कम होने के कारण हवा की गति कम हो जाती है, जिससे प्रदूषित कण आपस में चिपकते हैं और नीचे ही रह जाते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले में 5 लोगों की मौत पर गहरा दुख जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गौरतलब है कि जिले के मोतीपुर के वार्ड संख्या 13 स्थित एक घर में आग लग जाने से परिवार के 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई थी। केंद्र सरकार ने अज्ञात इलेक्ट्रॉनिक बाधा के कारण 2 घंटे में भारतीय वायुसेना के 3 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के पाकिस्तानी समर्थक हैंडल के झूठे दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया है कि यह भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण विमान था, जो एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। भारतीय वायुसेना ने कहा कि नागरिक संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने नागरिकों से ऐसी गलत सूचनाओं से सावधान रहने और उन पर विश्वास करने या उन्हें साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करने का भी आग्रह किया है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 4 दिवसीय क्रिकेट रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के अंतर्गत आज बिहार और मिजोरम के बीच 4 दिवसीय मैच खेला जाएगा। इस मैच की पूरी तैयारी कर ली गई है। बिहार टीम के कप्तान सकीबुल गनी हैं। पटना जिले के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के एक साइबर ठग ने एक व्यक्ति से सिपाही बनकर 55,000 रूपये की ठगी कर ली। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने चुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, महागठबंधन के वोट बढ़े पर एनडीए ने बड़ी छलांग लगाई। विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए का प्रति सीट औसत वोट 64,619 था, जो इस बार बढ़कर 96,156 हो गया। दैनिक जागरण लिखता है, सीटों और वोटों की हिस्सेदारी में जदयू सबसे बड़ा विजेता बना। AIMIM, बसपा और जसपा ने एनडीए का काम आसान किया। दैनिक भास्कर ने लिखा है, करारी हार के बाद लालू परिवार में महाभारत। रोहिणी ने संजय को जिम्मेदार बताते हुए राजनीति छोड़ी, परिवार से भी दूरी बनाई। प्रभात खबर की सुर्खी है, पटना जिले के 149 प्रत्याशियों में से 121 अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। आज अखबार लिखता है, एनडीए की प्रचंड जीत पर मुख्यमंत्री को बधाइयों का तांता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत का दौर तेज हुआ। जदयू के नेताओं ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार ने जातिवादी राजनीति को नकार दिया है। भाजपा से पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निलंबित पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने इस्तीफा दिया। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में लगातार हो रही है गिरावट। अगले 2 दिनों के दौरान कई स्थानों पर कोहरा छाए रहने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।